This is VOA News via remote. I'm Gene Randall. Troubling spikes in coronavirus cases are being reported in Russia, India, and Pakistan. Almost 10,000 in Russia, 20% higher than the previous day. Medical authorities say the country now has more than 124,000 suspected COVID-19 cases and a death toll of 1,200 in a half dozen regions, including the Moscow area. Because coronavirus test results in Russia are thought to be only somewhat reliable, the actual numbers could be much higher. Among those stricken by the virus, Russian Prime Minister Mikhail Mishustin, who says he is temporarily stepping away from running the cabinet. A growing fear in Russia that its medical system cannot handle a surge in corona infections. And Moscow's mayor says there is a plan to use sports stadiums as temporary hospitals. Pakistan today announced nearly 1,300 new COVID-19 cases, pushing its total to 18,000. It may be connected to increased testing. Prime Minister Imran Khan has set a goal of 20,000 tests a day. His government says it may soon ease some pandemic controls, but health officials are warning that could lead to an explosion of new infections that would overwhelm Pakistan's healthcare system. Some officials are urging even stricter controls. The country has lost a reported 417 lives to the outbreak. India has recorded its worst daily new case number, 2,300, bringing its total caseload to well over 37,000 and over 1,200 deaths. India's 1.3 billion people have been under lockdown because of the virus, and it's been extended to May 17th, though there's been an easing of restrictions, which is expected to continue in the coming week. Meanwhile, the coronavirus continues its relentless attack on the world and its people. There have been close to 3.4 million cases reported by Johns Hopkins University in 187 countries and regions. The death toll is just under 240,000. Pandemic figures here in the U.S. are beyond dramatic. 1.1 million cases and over 65,000 fatalities. This is VOA News. The U.S. Food and Drug Administration has given emergency approval to the use of the antiviral drug remdesivir, which in tests has reduced COVID patients' average recovery time from 15 days to 11 days, and some believe in the process has probably saved lives. This country's preeminent expert on infectious diseases, Dr. Anthony Fauci, was scheduled to testify next week before a Democratic-led House committee looking into the nation's coronavirus response, but the White House has nixed the idea. It appears Fauci will be allowed to appear before a Republican-led Senate committee. He's been preaching the risks of reopening the U.S. economy too quickly, a view seemingly at odds with one espoused by President Donald Trump, who has been pushing governors to quickly get their states back in business. In fact, the U.S. this weekend is in the initial stages of reopening its fractured economy. Several governors are lifting stay-at-home orders, despite the advice of medical authorities, such as Dr. Fauci, who say relaxing pandemic controls prematurely carries with it the threat of a new wave of COVID infections. Texas is opening up this week, even though its numbers of virus cases has spiked in recent days. Among the more cautious governors, Andrew Cuomo of New York and J.B. Pritzker of Illinois, who say their statewide controls will stay in effect until conditions are safer. There have been more than 308,000 cases of coronavirus in New York, with some 24,000 lives lost. Illinois' numbers, 56,000 cases and death toll close to 2,500. France, Spain, and Germany have announced they are partially reopening as their new COVID cases decline. Spring weather is bringing large numbers of people outside as pandemic rules are relaxed. France, Spain, and Germany have had a combined 545,000 coronavirus cases with a cost of 56,000 lives. Italy is maintaining its shutdown for now. It's 28,000 COVID fatalities, the highest outside the United States. Democratic presidential candidate Joe Biden is denying a former staffer's allegation that he sexually assaulted her when Biden was a U.S. senator. The former vice president's first public comment on the allegation came during an interview on MSNBC's Morning Joe program. Tara Reid says she filed a complaint in 1993. Biden said he doesn't believe there is a record of any such complaint. On the alleged incident, Biden says, quote, "I'm saying unequivocally it never, never happened." A U.S. federal judge has thrown out the $66 million claim by the U.S. women's national soccer team that its players are victims of unequal pay under an existing collective bargaining agreement. But the court says it will allow the defending world champion team to proceed to trial with an allegation of discriminatory travel accommodations and medical support services. More news online at voanews.com. There is also a convenient, easy-to-use mobile app. Via remote, I'm Gene Randall. And this is VOA News.
السلام علیکم سامعین، شہناز عزیز حاضر ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ، جس کے دوران ہم بنیادی طور پر تو بات کریں گے کرونا وائرس کی صورتحال پر اور اس سے متعلقہ موضوعات پر، لیکن کچھ اور چیزیں بھی کل کی بات چیت سے سلسلہ جوڑتے ہیں۔ کل ہم بات کر رہے تھے کشمیر کے بارے میں، جہاں چند دن میں 3 صحافیوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے پولیس نے، تو ہم نے بات کی تھی کل ایمنسٹی انٹرنیشنل کے انڈیا کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اویناش کمار سے، جنہوں نے ایک بیان میں سے پہلے کہا تھا کہ پولیس کی طرف سے 2 نئے ایف آئی آر درج کرنا اور ان 2 صحافیوں کے خلاف تحقیقات شروع کرنا حکام کی طرف سے اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کا عندیہ دیتا ہے، اور خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب COVID-19 کے خلاف کوششیں جاری ہیں، اس طرح کے اقدامات ان کوششوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور خوف اور انتقام کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ انٹرویو کا کچھ حصہ آپ ابھی دوبارہ سنیں گے، لیکن چلیے پہلے سنتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ایک سیاسی لیڈر نظام الدین بٹ صاحب کا انٹرویو، جس وقت میرے ساتھ ہیں۔ اور نظام الدین صاحب کا تعلق پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے، ان سے بات کرتے ہیں صحافیوں کی حراست پر۔ نظام صاحب خود بھی صحافت سے وابستہ رہ چکے ہیں۔ جی نظام الدین بٹ صاحب، گزشتہ 2 دن میں 2 صحافیوں کے خلاف مقدمات پولیس نے درج کیے ہیں، اچانک یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
بدقسمتی کی بات ہے، ایک جمہوری ملک میں جہاں آزادی رائے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے اور جو میڈیا ہے اس کو فورتھ اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ اگر قدغن اس طرح کی لگتی ہے آزادی رائے پہ یا ہراس کیا جاتا ہے، رس کو تو بری بات ہے، جمہوری تقاضوں کے خلاف ہے اور جمہوری نظام کے برعکس ہے، اور اس سے برے اثرات ہی مرتب ہو سکتے ہیں عوامی ذہنوں پہ، اور جو رائے عامہ بنتا ہے بعد میں وہ انسٹیبلٹی کی طرف لے جاتا ہے پورے سماج کو۔ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت جبکہ کورونا کی کرائسس میں پوری دنیا مغلوب ہے اور اس سے نپٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، میڈیا کا سہارا لیا جاتا ہے تاکہ اس فائٹ میں میڈیا کا بھرپور ساتھ ہو، تو کشمیر میں اس طرح کی کاروائی کرنا اور میڈیا فریٹرنیٹی کو ہراس کر کے ایک الگ ایک نیریٹو پیدا کرنا، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، اور ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ اس وقت انتظامیہ کو اس کی ضرورت کیا پڑی۔ تینوں کے خلاف الزامات بھی سامنے آئے نہیں ہیں کہ کوئی ایسی کاروائی انہوں نے کی ہو جس سے سیکورٹی آف اسٹیٹ کو کوئی خطرہ لاحق ہوا ہو، یا انہوں نے جرنلسٹک ایتھکس کو اس طرح وائلیٹ کیا ہو کہ ان کے خلاف کوئی بڑی کاروائی کرنے کی ضرورت پڑی۔ ہم فیس بک سے ہی دیکھتے ہیں آج کل، اور ٹویٹر پر ہی دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اور میں نے ٹویٹ یوسف جمیل صاحب کا دیکھا، بہت ہی دلچسپ ٹویٹ تھا، انہوں نے کہا تھا انگریزی میں، ترجمہ جس کا ہے، خبریں سنیے اور رکنے کے بعد خبریں ختم، یعنی یہ کہ اب کوئی خبر نہ سننے کی نہ دینے کی ضرورت ہے۔ میڈیا کے ذریعے بہت سے مسائل حل کر سکتی ہے انتظامیہ، اس وقت کرائسس ہر طرح سے ہیں، عوام پریشان ہیں، لاک ڈاؤن میں سب لوگ ہیں، اور کوئی سماجی سطح پہ کوئی اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ ایک ایجوکیشنل پالیٹکس ہو یا پرووکیشن ہو میڈیا کی جانب سے، جس سے انتظامیہ کے کام کاج میں بادھا پڑے یا ریاست کے مفادات کو زد پہنچے، ایسی کوئی بات لگتی نہیں ہے ظاہری طور۔ اور خود بھی وہ تینوں جرنلسٹ، ان کا بھی ہم نے سنا، فیس بک پہ ہی دیکھا، وہ بھی خود پریشان ہیں کہ آیا ایک پروفیشنل کام انجام دینے میں اس طرح کی کاروائی، ایک بہت ہی سخت قانون کا اطلاق کر کے ان کو تھانوں میں لے کے ان سے انکوائریز ہوں، انویسٹیگیشن ہوں، اور ان کے سروں پہ گرفتاری کی تلوار لٹکے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انتظامیہ کو اس طرح کے اقدامات سے باز ہی آنا چاہیے, اور جو بھی ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے, ایک رائے عام ابھی بن رہا ہے, اور میڈیا فریٹرنیٹی کی بھی یہی ایک مانگ ہے کہ اس طرح کے آرڈر کو, حکم کو ریووک کیا جائے.
تو کیونکہ آپ اندازہ ہو آپ سے بات کر کے کہ آپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ جاتے ہیں, تو کچھ بی جے پی کی طرف سے کوئی ریئیکشن اس پہ نظر آئے؟
میں نے تو نہیں دیکھا بی جے پی کی طرف سے کوئی پوسٹ کسی کا, کسی بی جے پی لیڈر کا کوئی بیان اس پہ نہیں آیا. البتہ پولیس کی طرف سے ایک طرح کی وضاحت ایکسپلینیشن آئی تھی کہ ان کے خلاف کاروائی کیوں کی جا رہی ہے. اینٹی نیشنل کچھ انہوں نے فیس بک پہ اور پبلک ڈومین میں اس طرح سے اینٹی نیشنل کچھ چیزیں لانے کی کوشش کی تھی تاکہ عوام کو اسٹیٹ کے خلاف, اسٹیٹ اتھارٹی کے خلاف ایک اکسایا جائے. ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ آل دی تھری جرنلسٹ جن کا آپ نے نام لیا, زہرا از اے فوٹو جرنلسٹ, ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کون سا اس طرح کا فوٹو وہ اٹھا سکتی ہے کہ ہندوستان جیسے بڑے ملک کو اس سے کوئی خطرہ لاحق ہو. اسی طرح ہندو از اے ویری پرومیننٹ انگلش ڈیلی پورے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بھی اس اخبار کی ایک عزت ہے. بٹ اے کارسپونڈنٹ فرام کشمیر, آئی ڈونٹ تھنک کہ اینی آف ہز رائٹ اپس, میں خود جرنلزم میں رہا ہوں بڑی دیر رہا ہوں, بعد میں سیاست میں آیا, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اس طرح کا کوئی رائٹ اپ ہماری نظر سے گزرا جو قابل اعتراض ہو.
میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گی کہ کوئی بھی چیز جو لکھی جاتی ہے وہ اخبار میں پہلے ایڈیٹرز کے پاس جاتی ہے, وہ دیکھتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ یہاں بیٹھ کے کشمیر سے کسی نے لکھ دیا اور وہ ویسا کا ویسا چھپ گیا. تو اس کا مطلب ہے وہ اخبار کی پالیسیز کے مطابق ہے, اور ہندو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک موقر اخبار ہے, اس کی رسپیکٹ ہے.
آپ درست فرماتے ہیں, فرام رپورٹر ٹو اے ڈیسک, تھرو ڈیسک ٹو پبلک, ایک پروسیس ہوتا ہے اور سبھی کی انوالومنٹ اس میں ہوتی ہے. سنگل آؤٹ کرنا ایک جرنلسٹ کو, سنگل آؤٹ کرنا ایک رپورٹر کو, سنگل آؤٹ کرنا, میں کہتا ہوں یہ قدم ہی پورا ناسمجھی کی دلیل ہے, اور اس وقت پہ لیا جا رہا ہے جب پوری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ کس طرح سے انسانیت زندہ رہے, انسان زندہ رہے, ریاستیں اور ریاستوں کا اقتدار زندہ رہے, اس کشمکش میں ساری دنیا لگی ہے. تو انہوں نے تین کشمیریوں کو, جرنلسٹ کو اس طرح سے ہراس کرنے کی کوشش کی ہے, ایک اچھا قدم نہیں ہے. اور پھر بھی میں آپ کے مادھیم سے مطالبہ کروں گا سرکار سے کہ اس طرح کی کاروائی کو روک دیا جانا چاہیے, اور آزادی رائے کا احترام کیا جانا چاہیے, اور جو فورتھ اسٹیٹ کی عزت ہے, اس کا وقار ہے, اس کو قائم رکھا جانا چاہیے. جرنلسٹک فریٹرنیٹی کو یہ آزادی مہیا ہونی چاہیے کہ وہ پروفیشنل ایتھکس کا بہرحال خیال رکھتے ہوئے اپنا کام آزادی سے سر انجام دے سکے.
بٹ صاحب, آپ کی جو پارٹی ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی, وہ کشمیر میں حکومتوں میں شامل رہی ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کبھی آپ لوگوں کے کوئی پولیٹیکل ایسی بات چیت ہوتی ہے, کوئی ڈسکشنز ہوتے ہیں دلی سے جس میں آپ نشاندہی کریں کہ اس طرح کے واقعات کا ایک عام کشمیری پر اور پھر پوری کشمیر کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے؟
دیکھیے, آپ نے ایک بڑا سوال کیا, یہ تو سری نگر اور دلی کے درمیان تعلقات کی بات ہے. تعلقات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ دلی کو نیشنل کانفرنس کے دو چیف منسٹر اور پی ڈی پی کے ایک چیف منسٹر اور ایک وقت کے اپنے حمایتی سجاد دون صاحب کو اور آئی ایس ٹاپر جیسے لوگوں کو اور کئی ایسے مین سٹریم پالیٹیشنز کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں یہاں سسٹم کو زندہ رکھنے کے لیے اور ملک کے تئیں لائلٹی پیدا کرنے کے لیے, کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے, ملک کی ہم نوائی کے لیے, اور ان کو جیل جانا پڑا. تو ڈسکورس اور ڈائیلاگ اور آپسی نیریٹو کی کوئی بات ہی نہیں. پر لاسٹ سکس منتھس میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک ایسا کوئی رابطہ ہے نئی دلی کی سرکار اور یہاں کے مقتدر لیڈروں کے درمیان کہ وہ کسی ایشو پہ ان کے ساتھ मुद्दा हम बातचीत कर सकें या रिकंसिलेटरी एक जो डिस्कोर्स होता है उसको आगे ले जाएं या मसाइल जो होते हैं लोगों के वो दिल्ली तक पहुंचा के उनके हाल के तलाश करने के लिए कोई मुश्तर का काविश कोशिश हो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई संजीदा कदम किसी सतह पे सामने आया है कम से कम पिछले 6 महीनों।
मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी निजामुद्दीन बर साहब।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
तो सामिन, ये थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एक रहनुमा निज़ामुद्दीन बर साहब, जो साबिक सहाफ़ी भी हैं। और अब इस वक्त मेरे साथ हैं राकेश सिन्हा साहब, जो राज्यसभा के रुकन हैं। बीजेपी का जो नुक्ता नज़र है उसके बारे में इनसे बात करते हैं, कश्मीर की सूरत हाल पर और COVID-19 की सूरत हाल पर। राकेश सिन्हा साहब, तो दो सवाल हैं मेरे कि एक तो ये कि क्या कश्मीर में पाबंदियाँ सख्त की जा रही हैं प्रेस के खिलाफ?
मैंने जानकारी नहीं है, पता नहीं दूर से किसी जर्नलिस्ट को बुलाया गया है।
उनको फोटो जर्नलिस्ट तो इसलिए बुलाया गया था, उन्होंने फेसबुक पर कुछ चीज़ें डाली थी जो कि उनके आर्टिकल्स ही थे, वो लिखती रहती हैं अल जजीरा में और बहुत से न्यूयॉर्क टाइम्स में और दूसरे रिसालों में, तो उन्होंने वो डाली थी, तो उस पर उनको
कश्मीर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन इन कश्मीर। The things, the development is reaching to them, democracy has reached to their doorsteps, so common people are very happy. That's why कोई भी नेता या संगठन के किसी बयान पर आम लोगों की प्रतिक्रिया, कश्मीर में पूरी तरह से स्वतंत्रता है, लेकिन पूरी तरह स्वतंत्रता है। ये सब जो लोग पुरानी राजनीति को लौटाना चाहते हैं वही इस तरह की बातों को फैलाते हैं।
प्रेस की आजादी में तो ये है कि अगर कोई लिख रहा है तो
कहीं पर ही प्रेस की आजादी हिंदुस्तान में जितनी अधिक है उतना दुनिया के किसी हिस्से में नहीं। जिस देश में भारत के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को दर्जनों प्रवक्ता रोज आकर अपशब्द के द्वारा पिछले 7 साल से टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन पर, उनके सार्वजनिक जीवन पर उन पर झूठ आरोपित कर रहे हैं, उनके लिए बदजुबानी कर रहे हैं सोशल मीडिया से, उसके बावजूद भी किसी भी प्रेस को, किसी व्यक्ति को रोका नहीं गया है। तो प्रेस की स्वतंत्रता आवाज है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानती है कि प्रेस को किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं बांधना चाहिए, वो स्वयं सेंसरशिप से चले, स्वयं मीन्स अपने विवेक के आधार पर काम करें। और कभी भी उनके विवेक पर भारत सरकार ने सवाल, एक भी ऐसी घटना हिंदुस्तान में नहीं है कि प्रेस की आजादी को पिछले नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहीं पर भी सवाल खड़ा किया, एक भी ऐसी घटना का उदाहरण नहीं दिया जा सकता।
तो इसका मतलब यह है कि ज़ाहिर कश्मीर में कुछ मामला अलहदा भी हैं इंडिया से, तो इसका मतलब है कि जो भारत सरकार है वो इस तरह का कोई इकदाम नहीं कर रही या करना चाहती है प्रेस के खिलाफ, जैसे पुलिस तलब कर रही
है। कोई भारत सरकार कश्मीर भारत से बाहर नहीं है, वहाँ कोई किसी खास केस में क्या हुआ कॉन्टेस्ट, हर चीजें संदर्भ के अनुसार घोषित होती है। संदर्भ क्या है वो सब जो डिस्प्यूटेड मैटर होता है उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, संदर्भ क्या है जब तक मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतना मानता हूँ कश्मीर के अखबार में पूरी आजादी के साथ कश्मीर का अखबार छप रहा है, वहाँ लोग अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, बेसिकली प्रेस इज ए पार्ट ऑफ दी राइट ऑफ एक्सप्रेशन, जब लोगों को अभिव्यक्ति की पूरी आजादी है, अभिव्यक्ति की पूरी किसी आजादी पर कोई नियंत्रण नहीं है, किसी नेतृत्व के द्वारा कुछ बताने पर नहीं नियंत्रण है, सोशल मीडिया पर नियंत्रण नहीं है, कश्मीर के लोगों को सोशल मीडिया पर दिखने से कहीं रोका गया है, आज जितनी आजादी सोशल मीडिया पर लोग ले रहे हैं उस आजादी को कोई कम कर नहीं सकता है। तो ये सब मानना, ये सब एक भ्रम फैलाने की कोशिश है और वो भ्रम वही लोग फैला रहे हैं जो पहले भी कश्मीर को पुरानी स्थिति में देखना चाहते हैं, जो जहाँ कश्मीर नहीं जाएगा, कश्मीर पूरी तरह से स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भाव में जी रहा है, फ्रीडम और लिबर्टी भी है, फ्रेटर्निटी भी और डेवलप कर रहा है।
अच्छा सिन्हा जी, एक सवाल और कि कश्मीर में कुछ पार्टियां हैं जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है और या दूसरे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जो भी यानी भारत के साथ मिलकर काम करते रहे, ये अलहदगी पसंद जो ग्रुप्स हैं उनका हिस्सा नहीं है, तो क्या अब इनके और आपके दरमियान उनमें से भी कुछ लोगों को हिरासत में लिया रखा गया था, अब रिहा हुए हैं वो?
देखिए वहाँ कम्युनिस्ट जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं फ्रिंज एलिमेंट को मुख्यधारा का हिस्सा नहीं माना चाहिए। जो फ्रिंज एलिमेंट हिंसा में विश्वास करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को तोड़ना चाहते हैं, कश्मीर के इंटीग्रेशन को बाधा पहुंचाना चाहते हैं, ऐसे जो भी फ्रिंज एलिमेंट हो उस सर्वर में भी रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट एंड रिलीजन, वो दुनिया के किसी भी डेमोक्रेसी में लिबरल डेमोक्रेसी में फिल्टर ऑफ आर्म्स और यूज दी आर्म्स और एडवोकेट डू एडवोकेसी फॉर द यूज ऑफ आर्म्स एंड क्रिएट डिसहार्मनी हार्मोनी इन द सोसाइटी द लॉ टेक्स ऑन कोर्स इट इज ऑल एवरीथिंग इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ये संविधान के सद द्वारा चलता है और मैं करूँ या आप करें या कोई और करे संविधान के कानून के तहत ही आपके साथ कुछ होगा और यहाँ पर एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है जिस जुडिशियरी को मेमन जैसे आतंकवादियों के लिए भी अप्रोच किया जा सकता है। इसलिए न्यायपालिका जहाँ इतनी स्वतंत्र हो तो वहाँ वहाँ पर इस तरह की बातें सोचना गलत है।
अगर अमेरिका से मुकाबला किया जाए तो कुछ भी केसेस नहीं है भारत में, बहुत ही सूरत हाल वहाँ काबू में है, लेकिन वहाँ एक शिकायत हुई और WHO ने भी इसका जिक्र किया और अमेरिका का जो रिलीजियस आज़ादियों का इदारा है उसने भी भारत से कहा कि उसमें ख़ासतौर पर कहा जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है वो मुसलमान फैला रहे हैं। तो मोदी जी ने कहा भी है, परसों बयान भी दिया है बड़ा अच्छा, उन्होंने यही कहा है कि जो वायरस है किसी का धर्म या किसी का रंग और नस्ल नहीं देखता। तो लेकिन ये कि मीडिया में ऐसी बातें आएंगे तो क्या आप ऐसे मीडिया हाउसेस के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे?
देखिए पब्लिक डिस्कोर्स में मार्जिन पे डिस्कोर्स क्या होता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे हम लेजिटिमेसी नहीं दे सकते हैं। अभी कोरोना एक मानवता पे खतरा है, यदि इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया गया और जितने प्रकार की संकीर्णताएं हैं उनको छोड़कर यदि हम सेल्फ हेल्प और कम्युनिटी हेल्प नहीं करते हैं, दोनों चीजें जरूरी है, सेल्फ हेल्प करना, आइसोलेशन में रहना, कम्युनिटी हेल्प करना, कम्युनिटी के जो नॉर्म्स है उसको मान, दुनिया माना गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे बड़ा फैक्टर है, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जो लोग भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, चाहे न्यूयॉर्क में हो या इटली में हो या इंडिया में हो, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हैं और जानबूझकर करते हैं। इस बीमारी के बारे में जानने के लिए आपको किसी शोध की जरूरत नहीं है, 24 घंटे दुनिया के सभी न्यूज चैनल और सभी अखबार अभी सभी पृष्ठों को इसी पर डिवोट कर रहे हैं। जिस घटना से लगातार मौतों की काउंटिंग हो रही है, वर्ल्ड वॉर में हम इस तरह की मौतों की काउंटिंग देखते थे, बिना किसी युद्ध के बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, तो वहां मानवता यदि नहीं जगती है और मानव के अस्तित्व को, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बचाने की यदि सिर्फ एक इंस्पिरेशन नहीं होता है तो उसे तो हम एक राक्षसी ताकत ही कहेंगे ना। जो भी हो, यदि मैं सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ता हूँ, मैं यदि कम्युनिटी नॉर्म को नहीं मानता हूँ, मैं भारत के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में लोगों से अपील की 130 करोड़ जनता इसका सामना करे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस लड़ाई को प्रधानमंत्री ने जन युद्ध बना दिया, जो सॉलिडरिटी प्रधानमंत्री को मिल रहा है यह अनप्रेसिडेंटेड है भारत के इतिहास में। कुछ लोग इस भारत की इस विजय यात्रा में कोरोना को रोकने में और नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया में जो स्वागत मिल रही है, एक सांप्रदायिक एजेंडा को इस देश में अपने कुछ अनर्गल व्यवहार के द्वारा थोपना चाहते हैं। उन्हें हम सब जानते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन हमें उस चक्रव्यूह में नहीं फंसना, उसमें ट्रैक नहीं होना है, हमें अभी कोरोना से लड़ना है।
इसका मतलब है कि जहर, जैसा प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा था कि आप लोग ऐसा नहीं समझते, BJP एक गवर्नमेंट की, एक सरकार की हैसियत से ऐसा नहीं समझती कि सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार हैं इस बात के कि कोरोना वायरस भारत में फैले।
देखिए किसी धर्म पर कोई आरोप नहीं लगाया है, भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी धर्म को आरोपित नहीं किया है। जो लोग इस युद्ध में चाहे दुनिया के किसी हिस्से में साथ नहीं दे रहे हैं वे मानवता के अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। बस चाहे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, लॉकडाउन के बाद मुझे जब तक सरकार को निर्देश नहीं देगी कोई काम करने के लिए, तब तक मैंने अपने दरवाजे से बाहर पैर नहीं रखा है और यही उम्मीद हिंदुस्तान के हर नागरिक से की जाती है, कम से कम उन लोगों से जो खाते पीते हुए प्रशिक्षित हैं, जिनमें धार्मिक चेतना भी है, राजनीतिक चेतना भी है, सामाजिक चेतना है। कोई जो व्यक्ति टेलीविजन नहीं देखता है, जो व्यक्ति अपने रोजगार के लिए घूम रहा है, उससे गलती तो हो सकती है, लेकिन जो जिनके पास सामाजिक धार्मिक चेतनाएं हैं ऐसे लोगों से गलती की उम्मीद नहीं की जाती।
सिन्हा जी, जैसे कि आपने अभी खुद भी कहा कि जो सिवाय इसके कि जिसको खाता पीता आदमी अगर बाहर निकलता है तो गलत है, लेकिन जो लोग भूख की वजह से, जो डेली वेजेस के वजह से अपने, तो क्या उनके लिए इस वक्त हुकूमत का, बीजेपी का क्या प्लान है ऐसे लोगों की मदद के लिए?
भारत सरकार ने इस देश में करीब 10 मिलियन माइग्रेंट वर्कर्स का आंकड़ा था 2016 में। भारत सरकार, राज्य सरकार और अभी चाहे राजनीतिक पार्टियां जो भी हुई, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में भी रूलिंग की स्टेट, कम्युनिस्ट इन केरला, कांग्रेस इन राजस्थान, बीजेपी इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, जो भी पार्टी रूल कर रही है, सभी पार्टियां सरकार की तरफ से और खास करके भारत जो एनजीओ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लगभग 5 लाख स्वयंसेवक आउटरीच कर रहे हैं बिना किसी से। 5 लाख स्वयंसेवक भोजन लेकर, राशन लेकर, कल ही मुझे 3 परिवार का एक परिवार का फोन आया। एक महिला मेरे घर में बहुत पहले काम करती थी, कहीं से नंबर ऊपर करके फोन किया, हमारे घर में अभी शाम के बाद का भोजन नहीं है, मैं अब अरविंद केजरीवाल की आलोचना करूं या मैं उसको भोजन दूं, यह समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जब मानवता खतरे में है, लोगों के पेट में अनाज नहीं जा रहा, तो मैंने आरएसएस द्वारका यूनिट को फोन किया, उन्होंने 5 पद तत्काल में का तत्काल अभी भोजन पहुंचाई, बाद में उसकी व्यवस्था की जाएगी। 5-5 किलो आटा जो मैंने ट्विटर पर डाला, 5-5 किलो आटा और सब्जी उनको पहुंचा दी गई तुरंत में।
अच्छा।
ये आरएसएस कर रहा है, सब जगह किचन चल रहा है। मुंबई में 20,000 फूड पैकेट रोज बांटे जा रहे हैं संघ की ओर से, एक जगह से अनेक जगह मुंबई बांटे जा रहे हैं। तो आरएसएस के 5 लाख लोग साइलेंटली, ना वो ना जाति देख रहे हैं, धर्म देख रहे हैं, उसे देख रहे हैं, लोगों जरूरतमंद को देख रहे हैं। अभी एक ही कैटेगरी है जरूरतमंद, और दूसरी कैटेगरी है वो सहायता करने वालों, बस हेल्प, जो हेल्प कर रहे हैं और जो नीडी है। तीसरा कोई कैटेगरी अभी मानना, कौन क्या कर रहा है, मैंने किसी पोलिटिकल पार्टी से हिसाब नहीं मांगा कि आप क्या कर रहे हैं। अभी सबों का ही धर्म है कि मदद करें, शायद सब लोग कर भी रहे होंगे।
केरल का आपने जिक्र किया, केरल में उन्होंने स्कूलों को खोल दिया है जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके रहने के लिए, तो यहाँ दिल्ली में या दूसरी जगहों पे भी ऐसा इंतजाम होगा कि उनके रहने का कोई बंदोबस्त होगा माइग्रेंट वर्कर्स के?
हर जगह रचनात्मक व्यवस्था की गई है, और कहीं बड़े टेंट लगाए गए हैं, कहीं स्कूलों खोला गया है, कहीं सरकारी सार्वजनिक स्थानों पर उनको रहने दिया जा रहा है। तो जहाँ भी माइग्रेंट वर्कर थे, 80% माइग्रेंट वर्कर्स के पास रहने का था, और टेनेंट किराया नहीं ले रहे हैं, टेनेंट से अपील किए कि आप किराया नहीं ले, किराया लेते तो अपराध माना जाए। और जहाँ है टेनेंट किराया नहीं ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि माइग्रेंट वर्कर रोड पे रहते थे, 90% माइग्रेंट वर्कर्स के पास रहने की व्यवस्था थी, उनको वहीं पर रहने की अपील की गई। और ये सोशल डिस्टेंसिंग करना है, तो मुझे लगता है कि उसी नॉर्म के देखते हुए सभी जगह काम किया जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा साहब, थैंक यू सो मच।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
तो सामीन ये थी, और सामीन अब कुछ गुफ्तगू का हिस्सा एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारत के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार की गुफ्तगू से, जो उन्होंने कल की थी। तो ये जो दोनों सहाफ़ी हैं, पीरजादा आशिक साहब और मसर जहरा, इनमें पहली बात तो ये है कि पीरजादा आशिक को साइबर पुलिस ने उनको तलब किया, तो वो तो एक अखबार के लिए काम करते हैं, प्रिंट जर्नलिज्म के लिए। साइबर पुलिस का इसमें क्या काम था इस केस में, जबकि वो प्रिंट जर्नलिज्म क्या?
ये अपने आप में एक्चुअली ये ताज्जुब की बात है, साइबर क्राइम्स डिवीजन इसमें क्या कर रहा है, और खासकर क्यों उनको कहा जा रहा है कि वो उनकी स्टोरी जो है विल कैन कॉज फियर और अलार्म इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक, इस तरह की चीजें। तो मेरे ख्याल में वो अपने अपने आप में पहली चीज तो ये है कि वो समझ में नहीं आ रहा कि साइबर क्राइम इसमें कैसे इन्वॉल्व है, लेकिन मुझे लगता है उससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि एक ऐसे दौर में ये ऐसा हो रहा है जब कश्मीर में इंटरनेट जो सर्विसेज है पूरी तरह रिस्टोर नहीं है। हम जानते हैं कि 4G वहाँ अवेलेबल नहीं है, बावजूद इसके कि कोविड पैंडेमिक वहाँ का असर वहाँ भी देखा जा रहा है, बावजूद इसके कि वहाँ काफी लोग अभी ऑफिशियली भी वहाँ पर इन्फेक्टेड बताए जा रहे हैं, और ऐसे टाइम में जब और भी लोगों को इन्फॉर्मेशन की रियल टाइम जरूरत होती है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन जो है, उस टाइम में आप कह रहे हैं कि आप आपको एक तो आप बुनियादी तौर पे आप इंटरनेट सेवाएं सर्विसेज नहीं अवेलेबल करवा है, फंडामेंटल राइट में कहा जाता है। और कश्मीर पर यूएन स्पेशल रैपोर्टर का पहले भी बयान आ चुका है मेरे ख्याल में 2019-2018 में कि लोगों को वहां के लोगों को नहीं आया दिया एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन की जितनी कहीं और के लोगों को है। तो अगर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन के लिहाज से भी देखें जो कि बुनियादी हक का हिस्सा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में के अंदर भी, तो उस लिहाज से भी अगर देखें तो महत्वपूर्ण बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कहना पड़ेगा कि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कौन अवेलेबल करवा रहा है। एक तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जैसे कि 4G इंटरनेट वगैरह की सहूलियत हो। दूसरी बात ये कि ये बहुत बड़ा काम जो है स्टेट का अपना है जो कि वो इम्पार्शियल यूजफुल नॉलेज जो है प्रैक्टिकल नॉलेज खासकर ऐसे टाइम में जरूर वो अब मुहैया करवाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है तीसरी बात वो ये है कि ऐसे टाइम में मीडिया की जर्नलिस्ट की जिसको फोर्थ पिलर ऑफ कहते हैं स्टेट कहते हैं उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। तो अगर ऐसे टाइम में चाहे वो पीरज़ादा आशिक हो चाहे मसर जहाँ हो चाहे और भी जैसे पहले के सारे केसेस हों, पीरज़ादा आशिक को दूसरी बार उनके अपने इंटरव्यू के मुताबिक दूसरी बार तलब किया पुलिस ने पिछले 6-8 महीनों में जब से अगस्त से 5 अगस्त 2019 से जब से वहाँ लॉकडाउन ऑफिशियल लॉकडाउन किया गया वर्चुअली वहाँ पे। तो ऐसे टाइम में जब उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ती हैं मीडिया की प्रेस की और वैसे टाइम में अगर आप उनको हैरस कर रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात है।
जैसे कि उनका कहना है कि इससे पहले उन्होंने रिपोर्ट किया था कि COVID-19 के सिलसिले में कि जो टेस्ट किट्स भेजी गई थी वैली के लिए वो 5,000 जम्मू भेज दी गई, तो इस रिपोर्ट पर भी उनको तलब किया गया। तो ये एक और इंसानी हकूक का मामला है कि एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए, हर शहरी को बराबर हक है रसाई करने का किट्स तक या इलाज तक। तो इंडिया में उमूमी तौर पर भी ये बहुत ज़्यादा इतलास सामने आई हैं कि मुसलमानों को हरासा किया जा रहा है, उनको वार्ड्स अलग में रखा जा रहा है, और इसके अलावा ये भी हो रहा है कि जब कोई एक कैंसर हॉस्पिटल था उसने अनाउंस किया कि मुसलमानों को हम यहाँ उस वक्त तक नहीं आने देंगे जब तक कि वो अपनी नेगेटिव रिपोर्ट साथ ना लाए। तो इस पर एमनेस्टी ने कुछ रद्द अमल जाहिर किया या कोई पूछताछ की?
तो एक तो हम इस पर लगातार अपनी नजर भी रख रहे हैं, हमने इस पे सबने प्रेस रिलीजेस भी पहले भी हमने जारी किए हैं, लेकिन ये मैं बार बार कहता रहा हूँ पहले भी कि देखिए ये जो मसला अभी जो कोविड के समय में निकल के आया, तो ये कि ये भी आपके ही बात से साफ जाहिर होता है कि इनफैक्ट अगर देखिए तो मुसलमानों और कश्मीर का मसला जो है वो मुख्तलिफ नहीं है बाकी भारत में जो हो रहा है। इनफैक्ट ये उसी पैटर्न का एक तो यह है कि उसी हिस्सा है, खासकर इसलिए कि कश्मीर माना जाता रहा था जब तक कि इन्होंने यूनियन टेरिटरी में इसको नहीं बदला भारत सरकार ने कि वो इकलौता मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था, तो आपने उसको कन्वर्ट करके यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया तो वो अलग मसला है। लेकिन अगर आप देखें कि एक तो ये मसला अपने आप में था कि आप कश्मीर में आप टारगेट कर रहे हैं और वो नेशनली इंटरनेशनली सिंबल भी देखा जा रहा था कि भाई मुस्लिम इंडिया सोल मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट जिसको कहते हैं इकलौता है तो। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे देश में एक टेम्पलेट पहले से गढ़ा गया था और टेम्पलेट ये था कि मुसलमान हर इस देश में जो भी कुछ गलत हो रहा है हर चीज के जिम्मेवार है। वो नैरेटिव बढ़ता गया बहुत रफ्तार के साथ, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे वो राम जन्मभूमि पे और अयोध्या वाले पे सुप्रीम कोर्ट के ये हो, और उसके बाद सिटीजनशिप बिल जिसको हम जानते हैं कि बहुत खतरा, तो ये पूरे टेम्पलेट तो पहले से गढ़ा जा रहा था और उसमें वो ये उम्मीद कर रहे थे कि अगर ऐसी इमरजेंसी जो आ रही जो ग्लोबल इमरजेंसी है और उसमें इंडिया भी उससे जूझ रहा है, भारत भी उससे जूझ रहा है, तो ऐसे समय में कम से कम लोगों को सैनिटी होगी, सैनिटी जिसमें आप फर्क नहीं करेंगे लोगों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने इसको भी एक अपॉर्चुनिटी के रूप में राइट विंग एक पूरे प्रेस ने मीडिया ने स्टेट ने मिलकर कन्वर्ट कर दिया मुसलमान बाशिंग के लिए। और ये सिर्फ मैं मीडिया के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, ये ट्विटर पे जो चलता है उसके हवाले से नहीं कह रहा हूँ बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि हेल्थ मिनिस्ट्री की जो लगातार प्रेस ब्रीफिंग्स हुई हैं और उसमें जिस तरीके से तबलीगी जमात वाले मसले को अलग से हाईलाइट करके पेश किया गया और जबकि कई लोगों ने फिर उस पर जब सवाल उठाए हैं और उसके पूरे मेथोडोलॉजी पर सवाल उठाए हैं कि किस तरह से ये बायस डेटा कलेक्शन का मामला है, इन सब को लेकर के फाइनली जो उस पे नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन ने भी एक इशू स्टेटमेंट इशू किया चैलेंज किया तब जाकर के उन्होंने उसको लेकर के उसको चेक किया है। लेकिन ये अलग बात है कि अगर स्टेट ही कुछ खुद इस तरीके से अगर स्टेटमेंट दे रहा है जो बिल्कुल एक कम्युनिटी को टारगेट करके अगर डेटा रिलीज कर रहा है प्रोजेक्ट कर रहा है तो जाहिर है उसका जो मैसेज जाता है वो बहुत खतरनाक जाता है। बजाय इसके कि आप ये कहें कि ऐसी कोई इमरजेंसी ऐसी कोई पेंडेमिक ऐसी کوئی کرائسس مذہب کی محتاج نہیں ہوتی, کسی جات کی محتاج نہیں ہوتی, ہر کسی کوئی کلاس کو لے کر محتاج نہیں ہوتی, ہر کسی کو ایکولی امپیکٹ کرتی ہے, اثر ڈالتی ہے. اس کے بجائے آپ نے اس کو ایک ریلیجیس بیسڈ ایک کانسپریسی کا حصہ کر دیا, اور یہ اپنے آپ میں بہت خطرناک ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف جو پہلے سے ایک جو ٹیمپلیٹ پچھلے خاص کر پچھلے 6 سے 8 مہینوں میں بہت ایکسلریٹ ہوا تھا, اس کا ایک نیکسٹ لاجیکل اسٹیپ کے روپ میں دکھایا جانا چاہیے. جو پردیش میں ہوا اور کشمیر اسی پیٹرن کا ایک بہت سیدھا جسے کہتے ہیں ایگزامپل ہے.
تو اویناش میں آپ سے یہاں یہ پوچھوں گی کہ ظاہر ہے مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی چیز کہتے ہیں وہ بائنڈنگ تو نہیں ہے, یہ تو اسٹیٹس کے اپنے ریئیکشن پہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرتی ہیں یا نہیں, اور یہ ایک مہذب اور جو ریاست ہو یا ایک سول سوسائٹی ہو وہ قبول کرتی ہے اس طرح کے کرٹیسزم کو. تو یہ جو COVID-19 ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, یہ ایک عالمی مسئلہ ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عالمی طور پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے سر مسلمانوں کے ساتھ انڈیا میں COVID-19 کے ریفرنس سے جو کچھ ہو رہا ہے؟ یہ تو WHO کا بھی کنسرن ہونا چاہیے, یہ تو یونائٹیڈ نیشنز میں بات ہونی چاہیے.
بالکل, تو یہ آپ نے صحیح سوال اٹھایا. ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک بار بار کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہمارا کہنا بائنڈنگ نہیں ہے, لیکن ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا اور اس کا خاص کر اگر انڈیا میں کام کریں تو انڈیا کے کانسٹیٹیوشنل لاز بھی کافی روبسٹ ہیں, ایسا نہیں کہ انڈیا کے کانسٹیٹیوشنل لاز جو ہیں وہ ویک ہیں. اور دونوں, اور یہ بھی بات ہے کہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا جو ہیں چاہے وہ سول پولیٹیکل گورننس ہو, گورننس آف انٹرنیشنل سول پولیٹیکل رائٹس ہو, یا یونیسکو کی اکنامک سوشل کلچرل رائٹس ہو, جس کے سب کے انڈیا سگنیٹری ہے, ہم ان کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے سگنیٹری ہیں اور اس میں بہت کلیئرلی کہا گیا ہے کہ ایسے کرائسس ٹائم میں بھی, اور پہلی بات میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے آپ جو بھی ریسٹرکشنز لگا رہے ہیں, اسٹیٹ کے ایمرجنسی پاورز ہیں, تب بھی وہ ایک تو ڈیمونسٹریبلی نیسیسری ہونے چاہیے, اور آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ وہ ضرورت کے حساب سے اختیار کیے گئے ہیں اور ضرورت کے ریشنل سے پروپورشنیٹ بھی ہیں وہ. تو اس حساب سے اگر آپ اس کو پروف نہیں کر پا رہے ہیں, اگر آپ اس کو ڈیمونسٹریبلی, اس لیے بہت بہت صاف صاف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ کہیں کہ یہ غلط ہے. اور ایسا نہیں کہ صرف ہوا کی بات ہے, یہ ہے کہ آپ سگنیٹری ان لاز کے تو آپ کو تو جواب دے ذمہ دار ہونا پڑے گا ان سوالوں کا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک عالمی مسئلہ ہے, یہ میں جانتا ہوں کہ کم سے کم 2 جگہوں پہ اس پہ لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اور بھی لوگ, ظاہر ہے کہ اس پہ اور بھی بڑے سوال اٹھنے چاہیے. کم سے کم جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں, ایک تو یہ ہے کہ WHO نے کہا ہے کچھ دنوں پہلے, ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے, ٹو میک اٹ اے ریلیجیس کرائسس ڈز ناٹ ہیلپ, اٹس اے مائلڈ کامنٹ آئی مسٹ سے, بٹ ایٹ لیسٹ انہوں نے فارملی کہا ہے, خاص کر انڈیا میں جس طرح سے مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے تبلیغی جماعت والے مسئلے کو لے کر, تو اس پر ان کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور وہ اس کو یہاں پر کافی لوگوں نے اکنالج بھی کیا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز چپ رہے ہیں. دوسرا, US کانگریس آف انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم جو ہے, وہ اس نے بھی کنسرن مسلمانوں کے مدعے پر ظاہر کیا ہے جس طرح سے ٹارگیٹ ہو رہے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر.
ظاہر ہے کہ EU کو ان کی جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے ان کو بھی اس پر کہنا چاہیے, UN اسپیشل ریپورٹرز جو ہیں جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کو لے کر کے اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن کو لے کر کام کرتے ہیں, ان کو بھی اس پر مسئلے پہ اور بھی کھل کر بات کرنی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ یہ ہونا چاہیے, کچھ ہو رہا ہے. مجھے امید ہے کہ ظاہر ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بھی کھل کر لوگ بات کریں گے, کیونکہ ان کی ذمہ داری بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ بھارت سرکار کی ذمہ داری ہے اس وقت ان سب چیزوں کو اون کرنے کی. یہ اچھا ہے کہ کم سے کم پچھلے 2-3 دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مڈل ایسٹ میں وہاں کے لوگوں نے, وہاں کے انٹلیکچوئل کلاس سے, پروفیشنل کلاس سے, جس طریقے سے انکلوڈنگ سم آف دا سینئر پیپل, جس طریقے سے لوگوں نے وہاں پہ اپنی ناراضگی ظاہر کی ہے کہ کس طرح سے پوری قوم کو, پوری کمیونٹی کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے انڈیا میں, تو میرے خیال میں وہ بھی ایک اچھا ہے کہ ایک طرح سے اس کے ریزلٹ ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. کل بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد پرائم منسٹر کا اسٹیٹمنٹ بھی آیا ہے, UAE کے امبیسڈر, انڈین امبیسڈر کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, تو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں اثر دکھ رہا ہے ان سب چیزوں کا. جیسے کہ کل جو پرنسس UAE کے ان کا اسٹیٹمنٹ آئی جن میں انہوں نے گاندھی کے ویلیوز کو یاد کرتے ہوئے بات کی ہے, میرے خیال میں وہ بہت پازیٹیو نیریٹو ہے. بھلے انہوں نے فیس بک پہ پوسٹ کیا ہو, لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ان کی کہانیاں, ان کے فوٹوگرافس, فوٹو جرنلسٹ ہیں, فری لانس ہیں, انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز رہے ہیں, بڑے بڑے میڈیا انسٹیٹیوشنس میں, واشنگٹن پوسٹ, الجزیرہ وغیرہ سب جگہ وہ چھپے ہیں, انڈین میڈیا میں بھی کافی جگہوں پہ چھپے ہیں. تو وہ چھوٹا موٹا بھلے نام نہیں ہے, وہ فری لانس جرنلسٹ ہے, لیکن وہ بڑا نام ہے, انکنالج نام ہے. تو پہلی بات تو ہمیں وہ بھی اکنالج کرنی پڑے گی کہ ایسے اگر ناموں کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو آپ صرف ان انڈیویجلس کو ٹارگیٹ نہیں کر رہے ہیں, آپ اس طرح سے ایک میسج دے رہے ہیں, اور وہ میسج یہ دے رہے ہیں, اور یہ بھی بات بیسٹ ہے. اور یہ پچھلے 4-5 دنوں کے بھیتر ہر روز یہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے, جیسا کہ میں نے کہا پچھلے ایک ہفتے کے بھیتر بھیما کورے گاؤں, اس کے بعد اینٹی سی اے پروٹیسٹرز, اور اب یہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک میسج ہے, اور یہ میسج یہ صرف ان انڈیویجلس کے لیے نہیں ہے, ایک پوری کمیونٹی کے لیے ہے جو ہیومن رائٹس, فریڈم آف ایکسپریشن, پروٹیسٹ, جمہوریت, ایسی چیزوں کے لیے, بیسک ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے اس کو لے کر اور بھی زیادہ سنجیدگی سے بات کرنے کی ضرورت ہے, اور صرف بھارت کے بھیتر نہیں, انٹرنیشنلی بھی. اور مجھے لگتا ہے کہ مسرت زہرا کا معاملہ بھی اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ صرف فیس بک تک نہیں تھا, بلکہ وہ ایک کہیں نہ کہیں وہ ایک بڑا میسج بھیج رہے ہیں ان انٹرنیشنل میڈیا کو بھی جن کی ورک کرتی رہی ہے, جہاں کے فوٹوز چھپتے رہے ہیں وغیرہ. تو یہ مجھے اس چیز کو اس لیے بھی انٹرنیشنلی اور سنجیدگی سے دیکھے جانے کی ضرورت ہے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
یہ تھے اویناش کمار, جو ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے انڈیا کے ڈائریکٹر ہیں. بات کر رہے تھے کشمیر میں صحافیوں کے معاملے پہ, اس کے ساتھ ہی بات ہوئی پریس کی آزادی سے متعلق دوسری ایشوز پر. اب چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف. سمیں نئی دہلی سے ہمارے نامہ نگار سہیل انجم نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ بھارت میں متعدد صحافی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. بمبئی کے کم از کم 53 اور چنئی کے کم از کم 25 صحافیوں کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو پایا گیا. دونوں ہی مقامات کے متاثرہ صحافیوں کی اکثریت دو نیوز چینل سے تعلق رکھتی ہے. بمبئی میں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اس ہفتے کے اختتام پر 167 صحافیوں کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ کیا گیا تھا, اور وزارت صحت نے صورتحال کو تشویشناک قرار دیا ہے. اس کے علاوہ نئی دہلی سے ہی ایک اور خبر میں کرونا وائرس یا COVID-19 سے نمٹنے والے طبی عملے اور پولیس پر بڑھتے ہوئے حملوں کے درمیان بھارتی حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے, جس کے مطابق طبی عملے پر حملہ سزا کے قابل جرم مانا جائے گا, اور اگر کوئی شخص ڈاکٹروں, پیرامیڈکس یا پولیس ٹیم پر حملے کا ذمہ دار پایا جائے گا تو اسے 7 جیل کی سزا ہو سکتی ہے. تو چلیے سنتے ہیں سہیل انجم کی رپورٹ, اور اس کے بعد کچھ اور موضوع.
بھارت میں فیلڈ میں کام کرنے والے صحافی بھی اب کرونا وائرس کے شکار ہونے لگے ہیں. ممبئی کے کم از کم 35 اور چنئی کے کم از کم 25 صحافیوں کا کرونا ٹیسٹ مثبت پایا گیا ہے. دونوں مقامات کے متاثرہ صحافیوں کی اکثریت نیوز چینلوں سے تعلق رکھتی ہے. ممبئی میونسپل کارپوریشن کی جانب سے اختتام ہفتہ 167 صحافیوں کا کرونا وائرس ٹیسٹ کیا گیا. وزارت صحت میں جوائنٹ سیکرٹری لو اگروال نے اس صورتحال کو افسوسناک قرار دیا ہے, اور اس بات پر زور دیا ہے کہ جب تک باہر کرنا بالکل ضروری نہ ہو صحافی گھروں میں رہیں. ممبئی کا معاملہ اس وقت روشنی میں آیا جب ایک سینئر صحافی اشوک باگریا نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ایک نیوز چینل کی پوری ٹیم کا کرونا ٹیسٹ مثبت پایا گیا ہے. انہوں نے میڈیا اداروں سے اپیل کی کہ وہ صحافیوں کو سہولتیں فراہم کریں. انہوں نے مزید کہا کہ ممبئی میں بی ایم سی نے صحافیوں کا ٹیسٹ کیا ہے, دہلی میں بھی کیا جانا چاہیے. انہوں نے میڈیا اداروں سے یہ بھی اپیل کی کہ وہ صحافیوں کے طبی اخراجات برداشت کریں, اور ان کو کام نہ کرنے سے جو نقصان ہو اس کا ازالہ کریں. ممبئی پریس کلب کے کمیٹی سربراہ گربیر سنگھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے صحافیوں پر زور دیا ہے کہ وہ فیلڈ میں نہ جائیں اور گھروں سے کام کریں. اگر صحافی متاثر ہوتے ہیں تو ہم ان کے میڈیکل انشورنس کا مطالبہ کریں گے. میونسپل کارپوریشن آف گریٹر ممبئی کے رابطہ عامہ افسر نے بتایا کہ 16 اور 17 اپریل کو آزاد میدان میں صحافیوں کے لیے ٹیسٹ کیمپ لگایا گیا. 167 افراد کے نمونے اکٹھا کیے گئے. الیکٹرانک اور प्रिंट मीडिया दोनों शोबों से वाबस्ता स्टाफ, रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स और कैमरा पर्सन्स के टेस्ट किए गए। तमाम मुतासरीन का गोरेगांव के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। तमिलनाडु महकमे सेहत के एक अहलकार के मुताबिक चेन्नई में एक न्यूज चैनल के 90 सहाफियों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिनमें से कम अज कम 25 सहाफियों का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली में 22 अप्रैल से दिल्ली हुकूमत की जानिब से सहाफियों का मुफ्त कोरोना टेस्ट किया जा रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर अनंत बगायतकर ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने गुज़श्ता रोज ऐलान किया था कि सहाफियों का टेस्ट मुफ्त किया जाएगा और आज से उसका आगाज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की दिलचस्पी है वो खसूसी तौर पर बनाए गए एक कैंप में जाकर अपना टेस्ट करवा रहे हैं। टेस्ट के दो रोज के बाद रिपोर्ट आती है, लिहाजा अभी ये नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली में सहाफियों को कोरोना वायरस हुआ है या नहीं। जब तक की रिपोर्ट्स ना आ जाएं, कुछ कहना कबल वक्त होगा। अनंत बगायतकर ने मजीद कहा कि प्रेस क्लब की जानिब से वजारत इत्तलात नशरियात को एक तजवीज इरसाल की गई है कि प्रेस क्लब और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की जानिब से नेशनल मीडिया सेंटर नई दिल्ली में एक कैंप लगाकर सहाफियों का कोरोना टेस्ट किया जाए। इस सिलसिले में हम लोग आगे की हिकमत अमली तय कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेस क्लब के कैंप में फील्ड में रहने वाले सहाफियों का तरजीही बुनियाद पर टेस्ट होगा और उसके बाद दूसरे स्टाफ का होगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के साबिक सदर गौतम लाहिरी ने वॉइस ऑफ अमरीका से बात करते हुए कहा कि दिल्ली हुकूमत की जानिब से राजेंद्र नगर के एक होटल में सहाफियों का टेस्ट शुरू हुआ है जो कई दिनों तक चलेगा। उन्होंने कहा कि फील्ड में काम करने वाले सहाफियों के लिए ज़्यादा खतरा है, इसलिए हमारी कोशिश होगी कि फील्ड में काम करने वाले हर सहाफी का टेस्ट हो ताकि पता चल सके कि कौन कौन मुतासिर हुआ है। उनके बकौल मुतासरीन के लिए हम लोग हुकूमत से सहूलतों का मुतालबा करेंगे। कोरोना वायरस या COVID-19 से निमटने वाले तिब्बी अमले और पुलिस पर बढ़ते हमलों के दरमियान हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है जिसके मुताबिक तिब्बी अमले पर हमला काबिल ताज़ीर जुर्म माना जाएगा। अगर कोई शख्स डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ या पुलिस टीम पर हमले का जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसे 7 साल तक की जेल हो सकती है। ये ऑर्डिनेंस एक सदी पुराने एपिडेमिक एक्ट में तरमीम करके लाया गया है। यहाँ एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में इसकी इत्तला देते हुए मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये ऑर्डिनेंस सेहत अमला और दीगर COVID-19 जाबाजों के तहफ़ में लाया गया है। इस जुर्म में मुलजिम की जमानत नहीं होगी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सेहत वर्कर्स पर हमले की जाँच 30 दिन के अंदर की जाएगी और ऐसे मामला में 1 साल के अंदर फैसला सुना दिया जाएगा। इस ऑर्डिनेंस के तहत मामूली केसेस में 3 माह से 5 साल तक की जेल और 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा, जबकि संगीन केसेस में 6 माह से लेकर 7 साल तक की जेल होगी और 1 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। अगर किसी हमले में सेहत वर्कर की गाड़ी या क्लिनिक को नुकसान पहुंचता है तो मुलजिम पर तबाह हुई चीज के मार्केट रेट से 2 गुना जुर्माना आयद किया जाएगा। जिस शख्स का नुकसान होगा उसे मुआवजा दिया जाएगा। ये ऑर्डिनेंस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस मुतालबे के एक रोज बाद लाया गया है कि तिब्बी अमले पर हमले के खिलाफ कानून बनाया जाए और अमले की जिंदगी के तहफ़ को यकीनी बनाया जाए। एसोसिएशन ने 23 अप्रैल को इन हमलों के खिलाफ योम सियाह मनाने का ऐलान किया था। याद रहे कि हालिया दिनों में COVID-19 से निमटने वाले डॉक्टरों, तिब्बी अमले और पुलिस पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों के मुतअद्दिद वाकयात पेश आए हैं। जिस रोज ऑर्डिनेंस का ऐलान किया गया उसी रोज मध्य प्रदेश के शिवहर जिला में पुलिस और डॉक्टरों की एक टीम पर हमला किया गया। यह टीम शिवहर के गोस्वानी गांव में एक शख्स गोपाल शिवहारे की जांच करने गई थी जो कि इंदौर से आया था। हमले में एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासती हुकूमतों से कहा है कि वो तमाम डॉक्टरों और फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को जिन पर हमले हो रहे हैं मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करें। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी अजय भल्ला के मुताबिक तमाम रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से दरख्वास्त की गई है कि वह ऐसे नोडल अफसर मुकर्रर करें जो सिक्योरिटी से मुतल्लिक किसी भी तनाज़ा को दूर करने के लिए 24 घंटे मौजूद रहें और अगर ऐसा कोई वाकया पेश आता है तो हुकूमतें सख्त कार्रवाई करें। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अच्छा, कोरोना वायरस के इस दौर में बहुत सी दिल पर असर करने वाली कहानियाँ भी सामने आई हैं। लाहौर में हमारे नामा निगार आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उमर हुसैन साहब से, जिनका ताल्लुक तो फूड बिजनेस से है, लेकिन जब उन्होंने खबर सुनी कि डॉक्टरों के लिए PPE यानी हिफाजती गियर की कमी हो रही है तो उन्होंने इसे फराहम करने का एक सिलसिला शुरू किया है और वो खुद ये गियर सिलवा कर आगे भेज रहे हैं और बहुत कम कीमत पर।
350 रुपए के अंदर 5 पीस निकलते हैं, ठीक है? तो आप सोचें 350 divided by 5, तो क्या 70-75, और उसके ऊपर आप इंडस्ट्रियल अगर स्टिचिंग डालें तो ये 100 रुपीज के अंदर यू कैन आप ये बना सकते हैं। हम लोग हुंजा भेज रहे हैं, कोयटा भेज रहे हैं, हम लोग लाहौर में तो हर जगह दे रहे हैं। अब जितने भी स्वीट टूथ हैं, अभी सबसे पहला स्वीट टूथ जो एम एम आलम वाला है, यहाँ पे हर डॉक्टर अपनी आईडी दिखा के कॉस्ट प्राइस के ऊपर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का भी 189 रुपीज़ के ऊपर लेके जा सकते हैं। लाहौर के अंदर हम लोग जिना हॉस्पिटल, सर्विसेज हॉस्पिटल, आपके जितने भी तकरीबन में हॉस्पिटल, आपका चिल्ड्रन हॉस्पिटल, गुलाब देवी हॉस्पिटल, इन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं। मैंने फेसबुक के ऊपर ही कोई और बंदा किट्स बेच रहा था, तो मैंने उसको मैसेज किया कि यार मुझे 6 किट्स चाहिए, किसी ने मेरे से मांगी है तो मैं डोनेशन देना चाह रहा हूँ। तो उसने मुझे कहा कि उमर भाई वैसे तो 4,000 रुपये की है, तो आपके लिए हम 2,500 की कर देंगे। 2,500 रुपये वाली वो किट मेरे पास पहुँची है, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो मैंने बंदे को फ़ोन किया, मैंने कहा ये तो सादा एक पोलिएस्टर का एक सूट है जिसकी सिलाई भी बहुत गंदी है, तो ये आप मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें साथ देना भूल गए, तो मास्क होगा, मुझे था बीच में कोई और चीज़ें भी होंगी, तो बीच में कुछ भी नहीं था। तो कहता नहीं नहीं यही है। तो मेरे जहन में आया कि यार हम लोग इसके अंदर किस तरह अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। जिप प्रक्योर करना, चीज़ें प्रक्योर करना, लेबर को बुलाना, फिर उनको स्क्रीन करना, उनको ग्लव्स पहनाना, वो लोग नहीं पहनते, पसीना आता है बीच में, हमें फिर उनके हाथ बार बार हम साफ कराते हैं अल्कोहल से कि यार आप लोग पता था कि वो बैठ के कर सकें काम। तो उसकी एडिट कॉस्ट है, हमें प्राइवेट जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग स्वीट टूथ को फॉलो करते रहे, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके किसी ने 500 भी भेजा है, किसी ने 1,000 भी भेजा है, किसी ने 10,000 भी भेजा है, किसी ने 5,00,000 भी भेजा है। तो उसकी उनके पैसों के ऊपर हम लोगों ने फ्री डिस्ट्रीब्यूट भी किया।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
तो सामिन ये थी, सामिन अब सुनते हैं यहाँ वाशिंगटन से मुदस्सरा मंजर की एक रिपोर्ट जो अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में होने वाले उस एहतजाज के बारे में है जो लॉकडाउन के खिलाफ था। कई जगहों पर ये महज इक्का दुक्का लोग ही थे, लेकिन कुछ जगहों पर ज़्यादा भी थे। तो इस एहतजाज की तफसील सुनते हैं मुदस्सरा मंजर से।
कोरोना वायरस की वबा ने दुनिया भर में लोगों को घरों तक महदूद रहने पर मजबूर कर दिया। 95% अमरीकी लॉकडाउन में है, अमरीकी मीशत सुस्त रवि का शिकार है और इंतखाबात के इस साल में कोई सियासी सरगर्मी मुमकिन नहीं। तहम सदर ट्रंप कोरोना वायरस के खिलाफ इकदाम से मुतालिक मीडिया को आगाह करने के लिए रोज़ाना ब्रीफिंग देते हैं और इस ब्रीफिंग के दौरान अपने इकदाम की सताइश के साथ साथ अपने सियासी हरीफों पर नुक्ताचीनी भी करते हैं और यूं उनकी दोबारा मुंतखब होने की कोशिशें जारी हैं। वो मुल्क को जल्द से जल्द लॉकडाउन से निकालना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने ये तक कह दिया था कि अमरीका का सदर होने के बायस उन्हें कुछ भी करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल है और वो एक हुक्म से पूरा मुल्क खोल सकते हैं। ताहम अगले ही रोज़ उन्हें एहसास हो चुका था कि ये इख्तियार रियासतों के गवर्नरों के पास है, मगर इतना ज़रूर हुआ कि सदर के हामियों को मौका मिल गया और वह सड़कों पर निकल आए, ख़ास तौर पर उन रियासतों में जहाँ ट्रंप ने गुज़श्ता इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी, जिनमें रियासत मिशिगन, केंटकी और पेंसिल्वेनिया भी शामिल हैं। कानूनी माहरीन कहते हैं कि अगरचे आईन की पहली तरमीम के तहत अमेरिका में इजहार की मुकम्मल आज़ादी हासिल है और रियासतों में लॉकडाउन भी एक हिदायत ही कही जा सकती है जिस पर अमल न करने से किसी कानून की खिलाफवर्जी नहीं होती, ताहम सिएटल यूनिवर्सिटी में लॉ के प्रोफेसर डॉक्टर तैयब महमूद कहते हैं कि तहजीब याफ्ता दुनिया में ये समझा जाता है कि कोई आफत आए और हुकूमत की तरफ से कोई हिदायत दी जाए तो लोग उस पर अमल करेंगे।
एक हदायत ही है और जो जैसे तहजीब याफ्ता जगहों पे ख्याल होता है कि जब इस किस्म की कोई आफत आए और हुकूमत की तरफ से हदायत हो तो लोग उसको उस पर अमल करेंगे, क्योंकि उसमें ही उनकी अपनी सलामती और दूसरों की सलामती है। तो जहाँ तक कानूनी बात रही, उस हद तक तो मेरा नहीं ख्याल कि अब तक जिस तरह की हदायत दी गई हैं उनके तहत ये जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं उनके खिलाफ कोई कानूनी चारा जोई की जा सकती है। तो हो सकता है कि खास तौर पे कुछ स्टेट्स जो हैं वो आगे बढ़ें और जरा सख्ती इसमें लाएं हदायत में और उसकी उसको कोई कानूनी शक्ल दें।
कोरोना वायरस की वबा ने लाखों अमरीकियों को रोजगार से महरूम कर दिया है, चुनाचे वाजे तौर पर ये सोचा जा रहा है कि इकानमी को कब तक बंद रख सकते हैं। डॉक्टर तैयब महमूद कहते हैं कि ऐसे लोगों की इमदाद के लिए बहाली के पैकेज का ऐलान तो किया गया मगर अभी तक ये इमदाद बहुत लोगों तक पहुंची नहीं है, और फिर ये भी कि ये इमदाद कितने रोज चलेगी। बहरहाल वो कहते हैं कि ऐसे में ज़रूरी था कि रियासतें और मरकजी हुकूमत एक ही बात करते मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। जो साइंसी नज़रिया है, जो डॉक्टरों और तिब्बी माहरीन की राय है, वाशिंगटन से पैगाम उसके बरक्स आता रहा है।
मरकजी हुकूमत है, फेडरल हुकूमत है, खासतौर पर सदर ट्रंप की तरफ से जरा मिक्स मैसेजिंग ही होती रही शुरू से लेके अब तक। वो शायद अपना जो उनका पॉलिटिकल बेस है जो ज्यादा लिबर्टेरियन है, राइट विंग है, कुछ उसमें ज्यादा वर्किंग क्लास भी है, तो वो उनको नहीं सूट करता कि इकोनॉमी बंद हो। उनको ज्यादा यही सूट करता है कि भाई कोई जो है ना चीन या किसी का जिम्मा लगाया जाए। तो मैं समझता हूँ ज्यादा सियासी एक चीज है और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि इतना एक सीरियस मसला सेहत का, लोगों की सलामती का एक तरह से पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है दाएं बाजू की कुव्वतों के दरमियान और रियासतों के दरमियान।
ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अमरीकी रियासत जॉर्जिया के गवर्नर है, जो कि एक रिपब्लिकन है, लॉकडाउन में नरमी करने और बास कारोबारी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले फ्लोरिडा के रिपब्लिकन गवर्नर ने बीचेस खोलने का ऐलान किया था और बड़ी तादाद में लोग बीच पर पहुंच गए थे और माशरती फासला रखने की कोशिश नहीं की गई थी। न्यूयॉर्क के डॉक्टर उमेर खान जैसे तिब्बी माहरीन इसके खिलाफ खबरदार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर लॉकडाउन खत्म कर दिया गया और माशरती फासला रखने पर अमल न किया गया तो कोरोना वायरस पहले से ज्यादा ताकत से हमला कर सकता है।
बेसिकली हम कुछ कर नहीं सकते इसके बारे में। द ओनली थिंग वी कैन डू इज सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे से जितने फासले में रह सके उतना बेहतर है, क्योंकि इस वक्त कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि अगर हमने सारे ये बैन लिफ्ट कर दिए जाएं और पब्लिक लोकेशंस खोल दी जाएं तो क्या होगा। मैं सुना था कि कहीं फ्लोरिडा में बीचेस कुछ खुल रहे हैं या कुछ इस तरह की बातें। फ्रॉम अ मेडिकल स्टैंड पॉइंट मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है।
डॉक्टर तैयब महमूद कहते हैं कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। अलबत्ता अगर अमवात थमने लगी तो शायद ज्यादा चीजें खुलने लगेंगी, मगर तश्वीश की बात यह है कि ये एहतजाज उन्हीं रियासतों में हो रहा है जहां खतरा भी ज्यादा है। और आज ही की इत्तलात है कि रियासत केंटकी में एहतजाजी रैली के बाद कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में एकदम इजाफा हुआ है। सदर ट्रंप अब भी यही चाहते हैं कि मुल्क जल्द से जल्द खोल दिया जाए क्योंकि मईशत की अबतरी किसी तरह उनके हक में नहीं जाती। डॉक्टर तैयब महमूद कहते हैं कि अफसोस की बात यह है कि सदर और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी ज्यादा नजर इलेक्शन लड़ने पर है।
अफसोसनाक बात सबसे ज्यादा यही है कि सदर साहब की तरफ से और उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो ज्यादा उनकी नजर इलेक्शन लड़ने पे है और अपने जो उनका सियासी बेस है उसको पुरजोश रखने पे है। अलावा इसके कि भाई जो इस वक्त है कितनी बैनुल अक्वामी और नेशनल आफत आई हुई है उसका मुदावा किसी तरह किया जाए।
कोरोना वायरस यकीनन किसी आफत से कम नहीं। आज के आदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में 25 लाख से ज्यादा लोग इससे मुतासिर हो चुके हैं और हलाकतों की तादाद 1,71,000 से ज्यादा है, जबकि अमेरिका में 7 लाख से ज्यादा मरीज हैं और 42,000 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
इसके साथ ही इजाज़त दीजिए शहनाज अजीज को आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इस दरख्वास्त के साथ कि आपने कई मशवरे सुने, ख़ासतौर पर माहरीन नफ्सियात के, उन पर अमल कीजिए, साथ ही हुकूमत की उन अहकाम पर भी जो कि सोशल डिस्टेंसिंग से मुतालिक हैं, यानी समाजी फासले से, कि आप ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां भीड़ भाड़ हो और अगर किसी ज़रूरत से जाना भी पड़े तो 6 फुट का फासला, तो कम अज़ कम 6 फिट का फासला दरमियान में रखें। تو چلیے آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالص ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہو